शुद्ध शब्द।
वैसे तो चैतन्य चरितामृत में यहाँ पर हमें आता है कि जो व्यक्ति भगवान के द्वारा मारे गए वो सायुज मुक्ति को लेते हैं, और यहाँ पर शिशुपाल के विषय में मैं दशम स्कंध में इसके विषय में पढ़ रहा था, तो उसमें वहाँ पर लिखा गया है कि शिशुपाल जब मारे गए थे भगवान कृष्ण के हाथों से, तब उस समय कहा गया है कि चैत्य देहोदितम ज्योति वासुदेवम उपाविशत। चैत्य शिशुपाल के शरीर से देह उत्थितम, उससे उनके शरीर से एक ज्वाला एक ज्योति प्रकट हुई, ज्योति वासुदेवम उपाविशत, और सीधे वासुदेव के शरीर में जाके विराजित हो गई। पश्यतम सर्वभूतानाम, और ये सभी लोग जितने लोग वहाँ के वासी लोग थे राजसी यज्ञ में सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग देख रहे थे, और क्या देखें कि ये ज्योति शिशुपाल के शरीर से एक निकला और सीधे भगवान श्री कृष्ण के शरीर में विराजित हो गया। और कैसे लग रहा था, जैसे कि उदाहरण देते हैं उल्केवा, जैसे कि टूटा तारा भूरी कचप चुता, जैसे कि टूटा तो टूटा हुआ तारा जब भूमि पर गिरता है तो किस प्रकार दिखाई देता है, उसी प्रकार शिशुपाल के शरीर से वो ज्योति प्रकट होकर वो सीधे भगवान श्री कृष्ण के अंदर समा गए। तो ये जो ऐसे इस प्रकार पता लगता है कि शिशुपाल को सायुज मुक्ति प्राप्त हुआ। मगर यहाँ पर आज के श्लोकों में यहाँ पर श्लोक रूपांतर जी लिखते हैं, यहाँ पर नारद मुनि के द्वारा ये शिक्षा प्राप्त होता है कि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। तो ये सारूप्य मुक्ति इस प्रकार भी कहा गया है क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके विषय में लिखते हैं उनके तात्पर्य पर कि लोक प्रचलित के लिए ये सारूप्य मुक्ति है, मगर वास्तविक में उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस धरातल में जब लीलाओं को अंत कर वो जब भगवान धाम वापस जा रहे थे, तो उसी समय उनके शरीर से वापस शिशुपाल निकल कर वो वापस वैकुंठ धाम में प्रवेश हो गया। तो चैतन्य चरितामृत में पांच प्रकार की मुक्ति के विषय में चर्चा करते हैं, कहते हैं कि यद्यपि से मुक्ति हय पंच प्रकार श्लोक सामिप्य सारूप्य शरीर साथी सायुज्य आरा। तो ये पांच प्रकार की मुक्ति है। सारूप्य यानी कि जो भगवान के एक ही लोक में विराजित करना, सारूप्य सामिप्य यानी कि भगवान के साथ में उसका निवास करना, और सारूप्य भगवान का जिस प्रकार स्वरूप है वैसे रूप को प्राप्त करना, और साथी यानी कि भगवान का जिस प्रकार ऐश्वर्य वैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना, और सायुज्य भगवान का शरीर पर जाके विलीन हो जाना। तो यहाँ पर सायुज्य के विषय में कहा गया है ब्रह्म ईश्वर सायुज्य द्वित प्रकार, ब्रह्म सायुज्य है ईश्वर सायुज्य धिक्कार। तो दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति है, एक सायुज्य मुक्ति है जो कि भगवान के शरीर से जो ज्योत निकलता है उसमें जाके विलीन हो जाना, जिसको कहते हैं ब्रह्म सायुज्य, और दूसरा सायुज्य है ईश्वर सायुज्य यानी कि भगवान के शरीर में जाके विलीन हो जाना। तो ये दो प्रकार के सायुज्य मुक्ति है। और जो भगवान से जो द्वेष करते हैं वो द्वेष करने वाले लोगों को ये ब्रह्म सायुज्य मुक्ति ब्रह्म ईश्वर सायुज्य मुक्ति प्राप्त होता है, क्योंकि उन लोग निरंतर भगवान का स्मरण करते रहते हैं, निरंतर भगवान को द्वेष भावना से चिंतन करते रहते हैं, और क्योंकि भगवान के स्वरूप का ध्यान करने से उनको भगवान के शरीर में विलीन होने का वो मौका प्राप्त होता है। तो इस प्रकार दोनों की जो मुक्ति जो है वास्तविक में कैवल्य नरकाय केवल एक नर्क के समान है, ऐसे देखा जाए। प्रबोधानंद सरस्वती इसके विषय में टीका लिखते हैं कि केवल नरकाय इस प्रकार की जो मुक्ति है केवल नर्क के समान है, क्योंकि इनके इस मुक्ति में ऐसा क्या होता है, जो जीव आत्मा जो होता है वो अपने अस्तित्व को खोना चाहता है, वो जैसे कि ब्रह्म सायुज्य मुक्ति वाले लोग, इन लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत वेद का अध्ययन करते हैं, अपने मानसिक बुद्धि के द्वारा इन लोग भगवान को निराकार रूप में पूछते हैं, और इस कारण उन लोग भगवान के शरीर से जो तेज निकलता है उनको ही अंतिम गंतव्य समझ कर उनके अंदर प्रवेश होने का प्रयास करते हैं, और यह है ब्रह्म सायुज्य मुक्ति वाले, जिसको कहते हैं ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले, और जो दूसरा जो है जो कि ईश्वर शाही जो मुक्ति वाले, इन लोग पतंजलि योग करते हैं और पतंजलि योग के अष्टांग योग के द्वारा इन लोग भगवान को परमात्मा का दर्शन, परमात्मा का निरंतर ध्यान करते हैं, और परमात्मा का निरंतर ध्यान करने के कारण वो भगवान, हालांकि भगवान को उन लोग ऐसे समझते हैं कि ये प्रकृति के तीन गुणों से परे है, और उस परमात्मा को जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं है, किसी भी प्रकार का हलचल नहीं है, और उनका निरंतर ध्यान करते हैं, और वो उन लोग सोचते हैं कि हम भी इनके एक शरीर के एक अंश हैं, और उसमें प्रवेश होने का उन लोग प्रयास करते हैं। तो ये पतंजलि जो योग जो करते हैं, इन लोगों को ईश्वर साहित्य मुक्ति मिलता है। मगर अंततः तत्वा क्या है, दोनों को, दोनों जन अपने अस्तित्व को खोना चाहते हैं। जो मुख्य जो जीवात्मा का जो जीव अस्तित्व है, वो उस अस्तित्व को खोकर वो उस ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं, ये इस कारण से क्योंकि जीव आत्मा जो होता है इस भौतिक संसार में बहुत दुख और क्लेश को प्राप्त करता है, और दुख और क्लेश को प्राप्त करने के कारण वो सोचता है कि आध्यात्मिक धाम ऐसा धाम है जहाँ पर कोई शरीर नहीं है, जहाँ पर कोई व्यक्तित्व नहीं है। व्यक्तित्व होना यानी कि दुख और कष्ट होना, तो व्यक्तित्व को खत्म कर देना यानी कि दुख और शोक खत्म हो जाना। तो इन लोग दुख और शोक से इतना पीड़ित हो जाते हैं कि इन लोग दुख और शोक को खत्म करने के लिए लोग अपने अस्तित्व को खत्म करना चाहते हैं, मगर ऐसे होता नहीं है। ये उन लोग का केवल विमुक्त बुद्धिया, ये उन लोग का केवल एक काल्पनिक बुद्धि होने के कारण लोग सोचते हैं कि हम मुक्त हो चुके हैं, लेकिन वैसे नहीं होता। जैसे रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक हरा पेड़ है, जिस हरे पेड़ में जब हरी चिड़िया जब प्रवेश हो जाती है तो वो हरी चिड़िया दिखाई नहीं देती है, मगर हालांकि उस हरी चिड़िया का अस्तित्व है और उस पेड़ का भी अलग अस्तित्व है, और उस पेड़ में घोंसला होगा तो उसमें घोंसला में छोटे छोटे बच्चे का भी अलग अस्तित्व होगा, लेकिन दिखाई पड़ता है कि सब हरा है। उसी प्रकार एक ब्रह्म में, परब्रह्म में जाकर जीव आत्मा अगर विलीन भी हो जाता है, तब इस प्रकार लगता है कि वो विलीन हो चुका है, लेकिन तत्पर भी विलीन नहीं हुआ है, दिखाई पड़ता है कि वो विलीन हो चुका है। तो वैसा स्वरूप प्रभुपाद जी भी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं कि इसको और अच्छी तरह समझाने के लिए, जैसे कि विमान आकाश से जब उड़ता है तो कभी कभी बादलों में छुप जाता है, तो बादलों में छुप जाता है तो ऐसे लगता है कि मानो विमान बादल में घूम गया या खो गया, उन्होंने अपने अस्तित्व को खो दिया, लेकिन वो सत्य नहीं है। उसके अंदर पायलट पैसेंजर सबका अलग अलग अस्तित्व है। ठीक इसी तरह वो सायुज या ईश्वर ब्रह्म सायुज मुक्ति या ईश्वर सायुज मुक्ति, दोनों में भी उन जीव आत्माओं का अस्तित्व रहता है, और ये जीव आत्माओं का अस्तित्व रहने के कारण उन लोगों का पतन होने का पुनः संभावना रहता है। तो इन लोगों को ब्रह्म लोग प्राप्त होता है जहां पर कोई कार्यकलाप नहीं है, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए सिद्ध लोग, ये चैतन्य चरितामृत में इसके विषय में इस प्रकार कहा गया। तो वहां पर जाने के बाद भी उनका वहां से पतन होने का पूरा संभावना बना रहता है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, येना अरविंदाक्ष मुमुक्त मानिना त्वयस्त भावत अनुसिद्ध भूतया आरुह्य उच्चेना परम परम तथा पश्यंती अधो अनारते युष्मत अंग्रिया। तो ये इस प्रकार इसका वर्णन है, ये ना अरविंदाक्ष विमुक्त मानिना, हे मेरे प्रिय भगवान श्री कृष्ण कमल नयन जैसे आपको है कृष्ण, जो इस प्रकार जो अपने आप को जो 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 काल्पनिक दृष्टिकोण से सोचता है कि मैं विमुक्त मानिना, कि मैं मुक्त हो चुका हूँ, लेकिन असलियत क्या है, त्वस्त भावत, उन लोगों की जो भावना है वो अस्त हो चुकी है, जैसे कि सूर्य अस्त हो जाता है, त्वस्त, तो वो जो उन लोगों की जो भावना है वो अस्त हो चुकी है, इसलिए अविशुद्ध बुद्धिया। क्यों? क्योंकि उन लोगों की जो बुद्धि है वो अविशुद्ध यानी कि वो शुद्ध नहीं है, दूषित है, और दूषित होने के कारण उनकी भावना अस्त हो चुकी है। अस्त किसके प्रति हो चुकी है, भगवान के प्रति सेवा करने की जो भावना खत्म हो चुकी है। तो ये जो जीव आत्मा जो होते हैं, इन लोग क्या करते हैं, आरुह्य कुचेना बहुत तपस्या करते हैं, किस स्तर को, इस स्तर को प्राप्त करने, लेकिन इतना तपस्या करने के बाद भी उन लोग की दृष्टि क्या है, वहां पर कोई सेवा नहीं। राधा गोविंद महाराज अपने कुंती महाराज की प्रार्थना के इस प्रवचन में बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने आप को इस प्रकार जो भगवान की सेवा न करके केवल भगवान के सारे इसमें विलीन होने का प्रयास करता है, उन लोग कौन सब आलसी लोग हैं, क्योंकि उनको सेवा नहीं चाहिए। सेवा करेंगे तो फिर काम करना पड़ेगा या मेहनत करना पड़ेगा। जय श्री श्री राधा जी हरे भगवान जगन्नाथ प्रदेश सुभद्रा, तो बिना सेवा का उनको रहना है। और इसीलिए उन लोग कहते हैं कि भगवान को आकार नहीं है, भगवान निराकार है। तो वैसे इन लोग बहुत तपस्या करके आयुर्य कृच्छेना पदम पदम तथा, लेकिन वैसी अवस्था में पहुंचने के बाद भी पतन किया था, उन लोगों का मान से पतन होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे जो व्यक्ति सायुज मुक्ति को प्राप्त करते हैं तो पतन की अदा अनारते दुष्मत अंग्रेया, तो वैसे लोग इतने तपस्या करते हैं लेकिन परिणाम क्या है कि वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाते हैं। श्री प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे कि विमान आकाश में उड़ रहा है और उसको लैंड करने का या उसको जमीन पे लाने का कोई स्थान नहीं है, वो कब तक हवा में उड़ेगा, कभी ना कभी वो क्रैश हो जाएगा अगर नहीं लैंड करेंगे तो। इसी प्रकार अगर जो व्यक्ति आर्मी या पूछे ना बहुत ऊंचे स्तर के पदवी को प्राप्त भी कर लेता है लेकिन अनारत, वो किसका अनादर करता है, पश्यन्ति अधो अनारत युष्मत अंग्रिया, भगवान के परम पदम भगवान के जो चरण कमल है उसके प्रति वो अनादर करता है, और उनके प्रति अनादर करने के कारण उनका वहां से वापस पतन होने की पूरी संभावना रहती है। तो इसलिए जो सायुज मुक्ति वाले जो होते हैं उनका पतन की संभावना उनका पतन होता है। लेकिन यहाँ पर हालांकि श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि उनको सायुज मुक्ति मिला शिशुपाल को, लेकिन शिशुपाल को सायुज मुक्ति मिलने के बाद भी यहाँ पर लिखा गया है कि उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। दशम स्कंद में सायुज मुक्ति दिखाई देता है लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सारूप्य मुक्ति। क्यों? क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि लोक प्रचलित के लिए ये केवल लोगों को दिखलाने के लिए बहुत सारी जो मुक्ति प्राप्त हुआ। और यहाँ पर माध्वाचार्य बहुत सारे ये श्लोकों के द्वारा बहुत सारे ये असुरों का नाम बताते हैं, बहुत सारे शत्रुओं का नाम बताते हैं कि किस प्रकार पौंड्रक नरगे जैव शल्य कंस चरुकमणि ये सभी लोग ने सायुज मुक्ति प्राप्त सारूप्य मुक्ति को प्राप्त किया। तो ये सारूप्य मुक्ति कैसे प्राप्त हुआ? क्योंकि भगवान के द्वारा ये सब मारे गए, भगवान कृष्ण के द्वारा ये सब मारे गए और ये सभी भगवान कृष्ण के शरीर में ज्योति के रूप में विराजित हो गए। और जब भगवान जब भगवत धाम जा रहे अपने गोलोक धाम में जा रहे थे तो सबको वैकुंठ धाम में छोड़ के चले गए। इसी प्रकार पौंड्रक की भी स्थिति थी, पौंड्रक ने भगवान कृष्ण को चैलेंज किया कि तुम नकली वासुदेव हो, मैं असली वासुदेव हूँ। और ऐसे कहकर उन्होंने कहा एक एवं चापरा भूतानाम अनुकंपार्थम, मैं केवल जीव आत्माओं के लिए कृपा बरसाने के लिए मैं प्रकट हुआ हूँ, तुम अपने नकली चक्र को छोड़ दो। इस प्रकार कृष्ण को कहने लगे और कृष्ण कहे कि अगर तुम अपने आप को असली वासुदेव कहते तो मुझसे युद्ध करो। और दोनों के बीच में युद्ध चला जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपने चक्र के द्वारा उस पौंड्रक को वध कर दिया। और वध करने के बाद पौंड्रक को भी कहा गया कि उनको सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। कैसे? तो कहते हैं सन्नित्यम भगवत ध्यान प्रथवस्थ अखिल वंदना, सन्नित्यम भगवत ध्यान, क्योंकि निरंतर भगवत ध्यान करने के कारण निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण प्रवत्थ उसके जितने भी कर्म बंधन थे अखिल यानी कि सभी कर्म बंधन वो सब नष्ट हो चुका है केवल भगवान का स्मरण करने मात्र से। विभ्रांच हरे राजन, क्यों? क्योंकि वो भगवान का नकल कर रहा था। पौंड्रक जो था भगवान नारायण के स्वरूप को बराबर ध्यान करते करते उनका ही नकल कर रहा था, और उनका ही नकल करने के कारण वो कृष्ण के द्वारा मारे जाने के कारण स्वरूपम उनको वापस सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। तो इस प्रकार पौंड्रक भी कृष्ण के द्वारा मारे जाने के कारण उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ। और इसी यही स्थिति थी कंस की। कंस भी क्या करते थे, निरंतर भगवान का ही चिंतन स्मरण करते थे। वो निरंतर उनका जो मन था हमेशा उद्विग्न रहता था, हमेशा चिंता में रहता था। क्या कैसे पीपल आधन उसको पीते वक्त, खाते वक्त, वाचिरन और चलते वक्त, स्वप्नम सोते वक्त, श्वासन श्वास लेते वक्त, इस प्रकार निरंतर भगवान का स्मरण करने के कारण क्या हुआ उनको, वो भगवान के द्वारा मारे जाने के कारण उनको तत् एवं रूपम द्वारपम अप, तब उन्हें स्वरूप मुक्ति वहां पर प्राप्त हुआ। वैसा मुक्ति प्राप्त हुआ जो दुरावापम यानी कि बड़े से बड़े जो तपस्वी है उनको भी नहीं प्राप्त होता है। इतने सरल रूप से वो स्वरूप मुक्ति प्राप्त नहीं होता है। वो सारूप्य मुक्ति ऐसे असुरों को प्राप्त हुआ जो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा मारे गए हैं। तो यहाँ पर ये शिशुपाल का वास्तविक में देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एक भाग्य था, सद्भाग्य, जिसको लेकर युधिष्ठिर महाराज प्रश्न पूछते हैं कि शिशुपाल जो कि द्वेषी था कृष्ण के, द्वेषी होने के बाद भी उन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुआ, ऐसे कैसे, इसको मैं कैसे समझू। तब वास्तविक में इससे ये पता लगता है कि भगवान का द्वेषी की स्थिति है, जो भगवान से द्वेष करता है उनको ये फल प्राप्त होता है। तो भगवान का जो अनुकूल रूप में भक्ति करेगा तो उनको कितना बड़ा फल प्राप्त होगा, ये वास्तविक में हमें सीख प्राप्त होती है। इसलिए भगवान के, भगवान को अनुकूल रूप में निष्काम भाव से शुद्ध भक्ति करने से व्यक्ति की वास्तविक जो अंतिम लक्ष्य जो है कृष्ण प्रेम, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो हमें अंतिम लक्ष्य प्रदान किया वो प्राप्त होगा। तो भक्त जो होते हैं ये पांच प्रकार की मुक्ति भी नहीं चाहते। भक्त ये पांच प्रकार की मुक्ति को भी परित्याग करना चाहते हैं, उन्हें ये भी नहीं चाहिए। बिरवा मंगल ठाकुर वो अपने श्लोकों में बहुत सुंदर कहते हैं कि किस प्रकार एक भक्त जो है वो मुक्ति को कैसे तिरस्कार करता है। तो कहते हैं तात्पर्य मुक्ति उपागता सती भवतो कस्मात अकस्मात हिया श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवितो दासी पदम प्राप्ता दूरे तिष्ट मना गना कसी कतम पुर्या दना जन्मयी त्वम नाम नाम निज चंद्र सा रस लेपसो लोप भवेत। तो वो कहते हैं कत्वा मुक्ति उपागता गसी गति मतो, वो कहते हैं कि जब बिरवा मंगल ठाकुर जो कि भगवान के शुद्ध नामों को जब जप कर रहे थे तो उस समय उनके द्वार में स्वयं मुक्ति देवी खड़ी रही। कात्वम मुक्ति उपागता सी महे, तो वो खड़ी रही हाथ जोड़कर। तो हाथ जोड़कर जब खड़ी रही तब बिरवा मंगल ठाकुर पूछने लगे कस्मात अकस्मात हिया, तुम किस लिए यहाँ पर खड़े हो, क्या कारण है, किस लिए, कौन तुम्हें बुलाया। जब इस प्रकार पूछे तब वो कहने लगी श्री कृष्ण स्मरणे न देव भवितो, क्योंकि आपने भगवान कृष्ण का स्मरण किया है और भगवान कृष्ण का स्मरण करने के कारण, भगवान के नाम का जप करने के कारण दासी पदम प्रापिता, अब मैं आपकी दासी बन चुकी हूँ, अब कृपा करके मुझे आप ग्रहण करो। तब उस समय बिरवा मंगल ठाकुर कहने लगे दूरे तिष्ठे मना गना कसी, दूर चले जाओ, मेरे मेरे मन के सामने मत आओ, मेरे आंखों के सामने मत आओ। तब उस समय मुक्ति देवी पूछती है कतम पुर्या धनार्जन मई, मैंने ऐसा क्या पाप किया है, मैंने ऐसे क्या अपराध किया कि आप मुझे ठुकरा रहे हो। तब बिरवा मंगल ठाकुर कहते हैं त्वम नाम नाम निज चंद्र रसा, क्योंकि भगवान का हरिनाम इतना रसमय है और उसको जप करने से अगर कोई मुक्ति की लालसा करता है तो उसका सारा रस खत्म हो जाता है, इसलिए मुझे मुक्ति भी नहीं चाहिए, और इसलिए उन्होंने मुक्ति को भी ठुकरा दिया। तो भगवान के भक्त जो होते हैं वो वास्तविक में मुक्ति से भी घृणा करते हैं। और ये चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रकार बहुत बड़ी शिक्षा दी चैतन्य चरितामृत में, जहाँ पर सार्वभौमा भट्टाचार्य इतने बड़े प्रसिद्ध वेदांती वेदांत के पठन करने वाले थे और मुक्ति के प्रति इतना लालायित थे, मगर चैतन्य महाप्रभु के संग में आकर 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनके मुख से सारे वेदांत के विषय में सुने, लेकिन चैतन्य महाप्रभु चुपचाप बैठे, कुछ बोले नहीं। तब उस समय उन्होंने पूछा सातों मां भट्टाचार्य, मैं इतना तुम्हें समझा रहा हूँ, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है क्या नहीं? जो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तब सातों मां भट्टाचार्य ने जब कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैसे तो ईश्वर वचन बहुत सरल है, लेकिन आपके द्वारा जो बोला गया मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को बहुत अच्छी शिक्षा दी, और उन्होंने भी उनको समझाया कि किस प्रकार जीवात्मा और भगवान में अंतर है, और इस प्रकार उनको वैष्णव सिद्धांत के सिखा कर और उनको पूरी तरह जब बताए तो चकित हो गए। और फिर चकित होने के बाद उन्होंने कहा ठीक है, आत्माराम के विषय में तुम व्याख्या करो। तब सार्वभौम भट्टाचार्य ने 9 अर्थ बताए आत्माराम के, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य 18 अर्थ बताए और बोला कि ये तो बाहरी अर्थ है, और उन्होंने 18 अर्थ आत्माराम के विषय में गुह्य रूप में प्रकट किया, और सारे जो सार्वभौम भट्टाचार्य ने जो अर्थ बताया था उनको बिना स्पर्श करे, और सार्वभौम भट्टाचार्य सुन के चकित हो गए। और तब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना नारायण चतुर्भुज का दर्शन दिया, और जैसे ही दर्शन किए तो तुरंत ही सार्वभौम भट्टाचार्य उनके चरणों पर गिर गए, और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को चैतन्य महाप्रभु ने उठा के आलिंगन किया, और आलिंगन करते ही उन्हें कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ, जो कि हर्ष उल्लास में भाव विभोर में नाचने लग गए। और जिस नाच में जब गोपीनाथ आचार्य आकर देखे तो दंगित रह गए कि ये कल तक तो बहुत बड़ा बातें करता था मुक्ति मुक्ति के बारे में, अब क्या हो गया कि कृष्ण के प्रेम में नाच रहे हैं। तब उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा यह सब तुम्हारी कृपा है, क्योंकि तुम इनके संबंधी, इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा उन पर पड़ी, चैतन्य महाप्रभु को श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। और जब इस प्रकार करने के बाद जब उन्हें प्रसाद लाकर दिया सार्वभौम भट्टाचार्य को, तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रसाद के ऊपर बहुत सुंदर स्तुति गाया, और ऐसे स्तुति सुनते ही चैतन्य महाप्रभु और असमंजस में और खुश हो गए और भावाभिहोर में हो गए कि ऐसा जो व्यक्ति जो इस प्रकार मुक्ति के मार्ग पर थे लेकिन अब शुद्ध भक्ति को उन्होंने प्राप्त किया। और तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि हे महाप्रभु, आपने जगत को उद्धार किया तो ठीक है, लेकिन आपने मेरा उद्धार किया सबसे बड़ी बात है, ये तो मैं भी नहीं सोच सकता हूं कि इस प्रकार मैं जो कि ऐसे ज्ञान मार्ग पर था, जो कि मुक्ति के पीछे भाग रहा था, लेकिन अब मुझे मुक्ति सुनते ही घृणा होगी। तब उन्होंने एक श्लोक चैतन्य महाप्रभु के पास लाकर सुनाया, नमस्ते जीवेत यो भक्ति पदे सधाय भागा। जब इस प्रकार कहा कि ब्रह्मा जी ने स्तुति गाया है, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मगर तुम मुक्ति पदे को छोड़कर भक्ति पदे क्यों बोल रहे हो? उन्होंने कहा प्रभु कहे मुक्ति पदे यह पदे आया, मुक्ति पदे लिखा है, भक्ति पदे के ना पदा ये तुम्हारा आशा है, इसके पीछे तुम्हारा क्या इच्छा है कि तुम मुक्ति पदे को छोड़कर भक्ति पदे बोल रहे हो? तब उस समय उन्होंने कहा भट्टाचार्य कहे भक्ति समनाय मुक्ति फला, भगवत भक्ति विमुखे रहाय दंड काला। वो कहने लगे कि भगवत भक्ति का जो फल हमें प्राप्त होता है वो फल मुक्ति पदे के द्वारा, जो मुक्ति मिलती है भक्ति के द्वारा, जो फल प्राप्त होता है वो मुक्ति तो केवल एक दंड लोक को प्राप्त होता है, और भक्ति का जो फल है तो उसकी कोई सीमा नहीं, उसको हम कोई सीमा, लेकिन मुक्ति किसको मिलता है? केवल जो दंडित व्यक्ति है उनको प्राप्त होता है, इसलिए मुक्ति शब्द मुझे नहीं अच्छा लगता है। श्लोका यति चारी यते हाय सेवा द्वारा तबु कदाचित भक्त करे अंगीकार। अगर भक्त को कभी मुक्ति प्राप्त होता भी है तो भी वो केवल 4 प्रकार की मुक्ति लेता है, सालोक्य, सारुप्य, सामिप्य और सारथी। सायुज्य मुक्ति तो बिल्कुल ले जाता है, क्योंकि सायुज्य मुक्ति तो बहुत दंडित लोगों को प्राप्त होता है। सायुज्य सुनीत भक्ते हाया घृणा हय भाया नर्क वांछे तपु सायुज्य न लाया। वो कहते हैं कि भले ही हम भक्त को नरक मिल जाए तो चलेगा, वो नरक में जाने को तैयार है, लेकिन सायुज्य मुक्ति तो कभी नहीं जाए। सायुज्य मुक्ति इतना नर्क के समान है। और इसी प्रकार जो स्तुति है वो तीसरे स्कंद के इसमें वर्णन आता है यहाँ पर वर्णन करते हैं कि किस प्रकार भक्त भी ये चारों पांचों प्रकार की मुक्ति को नहीं चाहते हैं। साधु के साथ की सामिप्य साधु के एकत्वम अपि उता दिया मानम न घृणंती। वो इस प्रकार के पांच प्रकार की मुक्ति देने के बाद भी भक्त क्या करते हैं न घृणंती, ये सब नहीं चाहिए उन्हें। तो क्या बिना मत सेवनम जाना, केवल एकमात्र भगवान की सेवा चाहते हैं। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु हमें जो आज शिक्षा अष्टकम में एक शिक्षा देते हैं कि न धर्म न जन्म न सुंदरी कविता नीता में मम जन्मि जन्मनीश्वरे भक्ता भक्ति रहे चुकी तो है। मुझे इनमें से कोई वस्तु नहीं चाहिए, मुझे केवल एक चाहिए, तो कि हर जन्म जन्म में केवल आपके चरण कमल की भक्ति चाहिए। और ये श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें अंतिम वस्तु प्रदान की जिसके द्वारा मुक्ति जो है वो केवल तुच्छ लगता है। तो वैसे इसी प्रकार के वार्तालाप जो कि राय रामानंद राय के बीच में, रामानंद राय के बीच में और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये जब हो रहा था, तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को पूछा कि जीव का अंतिम सबसे अच्छी वस्तु क्या है, ये मुझे बताइए, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है। तब उन्होंने कहा जो वर्णाश्रम धर्म का, जो रामानंद राय कहने लगे, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन अच्छी तरह करता है उसके वो उसके द्वारा उनके जीवन का अंतिम उद्देश्य में प्राप्त होता है। तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भाई आगे कहो रहा है, ये तो बाहरी वस्तु और आगे कहो। क्यों? क्योंकि वर्णाश्रम धर्म का ठीक ठीक आचरण करने से भी व्यक्ति के अंदर ये भावना रहती है कि मैं ब्रह्मचारी ग्रस्त वानप्रस्थ या संन्यास हूँ या मैं ब्राह्मण क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार की भावना होने के कारण श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको तिरस्कार किया और कहा अब कहो राय। तब वो कहने लगे यत करोषि यत नाशि यत योषि तदाशि यत तपस्यसि कौन्तेय तत् पुरुषम् अर्पणम्। तब ये कहा कि जो भी तुम कार्य करते हो मुझे अर्पण करते हुए करो। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भाई आगे कहो राय, ये तो बाहरी और कुछ कहो और आगे कहो। क्यों? क्यों इसको तिरस्कार किए? क्योंकि इसके अंदर कर्म करने की आसक्ति बनी रहती है, इसलिए उन्होंने इसको भी तिरस्कार कहा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है सर्वधर्म परित्याग और समस्त धर्मों का परित्याग करके भगवान का एकमात्र शरण करना ही जीव का उद्देश्य है। जब ये कहा तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भाई आगे कहो रहा है और आगे कहो। क्यों? क्योंकि इसके अंदर व्यक्ति के अंदर यह भावना रहती है कि मैंने इतना सब कुछ त्याग किया और ये त्यागने की भावना होने के कारण वो भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको भी तिरस्कार किया। और जब आगे कहो राय तब कहा तब रामानंद राय ने कहा कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सुचिति न कांति। तो ब्रह्मभूत अवस्था में जो ज्ञान मिश्रा भक्ति को कहा तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भाई आगे कहो राय और आगे कहो, ये तो बाहरी वस्तु। क्यों? क्योंकि इसके अंदर भी उस जीव आत्माओं के अंदर भय बना रहता है कि कहीं मुझे शोक ना मिले, मुझे दुख ना मिले, इस प्रकार का दुख से वो डरता रहता है। और इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो भाई आगे कहो राय। तब राय रामानंद राय ने शुद्ध भक्ति के विषय में कहा ज्ञाने प्रयास उत्पश्यन ननंत एव जीवन की संमुखरिता भवती वार्ताम स्थाने स्थित स्तुति कृताम तन्मान मनोकीय प्रायश अजित जित त्रैष्टि हो गया। ये जब कहा तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा हाँ ये तो है, ये सही है, जिस स्थान पर तुम हो उसी स्थान पर रहते रहते भगवान की हरि कथा को भगवान के गुणावली के विषय में सुनो और यही वास्तविक में जीव का अंतिम उद्देश्य है भगवान के विषय में सुनना। और फिर भी चैतन्य महाप्रभु ने कहा आगे कहो ना, क्योंकि उसके अंदर भी दो प्रकार के भक्त है, एक साधक भक्त दूसरा है रागानुगा भक्त। तो वेदी भक्ति और रागानुगा भक्ति, तो वेदी भक्ति और रागा, तो चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि और मैं सुन तो और कैसे। तब उन्होंने कहा कि कृष्ण मति रस भाविता मति, कि वास्तविक जीव का सर्वोच्च वस्तु क्या है भक्ति के प्रति लौल्यम। जब लौल्यम उत्पन्न होगा, जितना ज्यादा लौल्यम उत्पन्न होगा उतना वो साधक भक्त से रागानुगा भक्ति में जल्दी पहुंच सकता है। ये लौल्यम एकमात्र ऐसी वस्तु है कि कहीं पर भी मिलता है तो तुरंत उसे खरीद लो, बिन सभी कीमत में उसे उसे खरीद लेना चाहिए, ये सबसे बड़ी वस्तु है। तब उन्होंने कहा कि आगे कहो राय। तब उन्होंने दास रस के विषय में कहा, फिर शांत रस, फिर साख्य रस, वात्सल्य रस, और फिर माधुर्य रस, और फिर परकीय रस। इस प्रकार वो बढ़ता गया और अंत में जब श्रीमती राधा रानी के विप्रलंब रस के विषय में जब कहा, तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा ये तो है, ये सर्वोच्च वस्तु है, और वो क्या है, कृष्ण प्रेम। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्तों को ये सर्वश्रेष्ठ वस्तु दिया है, जिसे प्राप्त होते ही मुक्ति जो है तुच्छ लगने लगती। तो वैसा उस प्रकार का जो शुद्ध भक्ति वो जब कृष्ण के प्रति करता है तो उनकी क्या गति प्राप्त होती है, तो वो तो लिखा नहीं इसमें। ये तो यहाँ पर केवल इतना लिखा है कि जो भगवान से द्वेष करता है तो उनको ये सारूप्य मुक्ति मिलता है, जो शुद्ध भक्ति करता है तो उनकी कोई सीमा नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कोई मारे गए सबको सारूप्य मुक्ति मिला, और केवल एक जन को छोड़कर, और वो थी पुतना। पुतना को सीधे मातृ का स्थान दिया भगवान ने, ब्रजवासी का स्वरूप लेकर आए थे। तो वैसे भगवान ने, भगवान के हाथों जो कोई मारे गए सबको सारूप्य मुक्ति मिला। तो इस ये भगवान यहाँ पर उनकी अनुकंपा, उनकी दया प्रकट होती है कि भगवान के द्वारा कोई कोई शत्रु भी होता है भगवान का, भगवान से द्वेष भी करता है, द्वेष रूपी भगवान का स्मरण करता है, तो भी भगवान उनके ऊपर अनुकंपा बरस, उन्हें मारकर उन पर अनुकंपा बरसाते हैं। ये भगवान का दया भावना, इस प्रकार भगवान का प्रकट होता है। तो ये श्लोकों से हम यही सीख मिलती है, और कुछ और शिक्षा।
थैंक यू। आपने बताया कि भगवान की नकल करता था और भगवान के हाथ मारा गया तो उसको सारे मुक्ति मिली, तो अभी बहुत लोग भगवान की नकल कर रहा है, तो भगवान के द्वारा मारा नहीं जाएगा, खुद मौत से मरेगा, उसकी क्या मुक्ति है?
वैसे आप बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा है प्रभु जी नीचे करेक्शन के लिए। तो ऐसा है कि भगवान कृष्ण के हाथ से मारे जाने से उन्हें सारूप्य मुक्ति मिलती है, और जो भगवान है करकर ऐसे नकल करता है तो उसको वो प्राप्त नहीं होगा। लेकिन वो दास रूप में अगर वो नकल करता है तो उसको जरूर प्राप्त होगा, सारूप्य मुक्ति से ज्यादा ही प्राप्त हो सकता है। जैसे कि ये जो कृष्ण लीला में जो कृष्ण का एक्टिंग किया था, तो ऐसे सुनने में आता है कि अभी वो कृष्ण हरे कृष्णा वाला बन गया, वो पूरी तरह भक्त बन गया, जो कृष्ण का रोल किया था। तो वो क्योंकि पीछे अगर सिद्धांत बैठा हुआ है तो फिर वो बच सकता है, अगर सिद्धांत नहीं है केवल भावुक पूर्वक कर रहा है तो उसका जीवन खतरा है, उसका आध्यात्मिक जीवन में खतरा है। इसलिए कोई भी धार्मिक कार्यकलाप बिना सिद्धांत का करते तो उसको कहते हैं भावुकपन, और कोई भी दार्शनिक कार्यकलाप करते बिना धार्मिक का तो उसको कहते हैं मानसिक चिंतन। तो ये दो प्रकार श्री प्रभुपाद जी भगवद गीता में लिखते हैं, फिलोसॉफी विदाउट रिलीजन इज अ मेंटल स्पेकुलेशन एंड रिलीजन विदाउट फिलोसॉफी इज अ सेंटिमेंटल। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, और उसके पीछे उसका कुछ सिद्धांत ठोस होना चाहिए, तब उसके जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में उसका रक्षा हो सकता है, और वो सिद्धांत धार्मिक के साथ सिद्धांत वही दे सकता है जो एक अच्छा प्रामाणिक इंस्टीट्यूट है। तो उसके अगर वो भगवान का नकल भी कर रहा है ना तेने प्रकार ना, अगर वो भक्त का संग में आ गया तो उसका जीवन बच सकता है, नहीं तो फिर प्रभु जी को चार टिप्पणी देंगे चतुर्भुज दिखाया। तो थोड़ा कमी हो गया, थैंक यू, बहुत अच्छा होगा सुधार की। और कुछ पांच मिनट बाकी है इसके लिए मैं थोड़ा लेट हूँ। यस शिशुपाल का जो शरीर से ज्योति निकला था वो बाहर से ज्योति दिख रहा था, लेकिन अंदर में उनका स्वरूप बैठा था, उस ज्योति के अंदर उनका स्वरूप है। ये जितने भी एक बार इन्होंने लेक्चर दिया था अपने राधा कृष्ण प्रभु ने वृंदावन से इधर से आए थे उद्यान, हाँ तो वहाँ से आए थे, तो उन्होंने लेक्चर दिया था, तो उन्होंने बताया था कि ये जितने भी ब्रह्मवादी लोग हैं इन लोग के शरीर से ज्योति निकलता है, ऐसे ऐसे लगता है कि ज्योति वहाँ चला गया, लेकिन ज्योति होने के बावजूद भी इनके अंदर उनका स्वरूप है, उनके अंदर उनका हाथ है पैर है सभी कुछ है, लेकिन भक्ति ना करने के कारण वो विकसित नहीं हुआ है। तब भगवान की कृपा से उनको वापस वृंदावन के यहाँ पर घास का जन्म प्राप्त होता है तिनके के रूप में, और जब गोपियों का चरण कमल उसके ऊपर पड़ता है तब उनको गोपियों के रज के द्वारा उनको भक्ति प्राप्त होती, फिर वो भक्ति करते तब उनका जो वास्तविक जो आध्यात्मिक शरीर विकसित हो जाता है और तब वो जाता भगवान के धाम, इस प्रकार उन्होंने व्याख्या किया था। तो वो जो शरीर है वो ज्योति के अंदर शरीर है मगर दिखाई देता है ज्योति है, तो भक्ति करने से क्या होता है ये हमारा स्वरूप विकसित होता है, स्वरूप बिना व्यवस्थित ये वास्तविक में मुक्ति है। जो भगवान को निराकार कहते हैं उनके आरुण्य कुचेना परम उनका इतना तपस्या है कि उन लोग उस स्तर पर पहुंच तो जाते हैं, लेकिन भगवान दया दयालु है, अब भगवान की कृपा से उन लोग को मिल सकता वृंदावन के यहाँ पर घास के रूप में, नहीं तो फिर वापस पतन दिया था, वापस गिर सकते हैं, और भगवान की अनुकंपा कब किस पे बरस सकती है बोलने से इस वरा तो उसका डेफिनेशन नहीं कर सकते। इसलिए प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बताते हैं कि इन लोग का पतन क्यों होता है, क्या कारण से, तो वो कहते हैं कि जैसे एक चाइनीज टॉर्चर करके एक पनिशमेंट है, और वो चाइनीज टॉर्चर क्या होता है कि उसको एक सफेद रूम में डाल दिया जाता है, और सफेद रूम में डाल देता है और उनका वस्त्र भी सफेद रहता है और सभी जगह सफेद सफेद कलर चारों तरफ, और उस रूम में बंद करके रख देता है, और वो उस सफेद रंग को देखकर इतना सफोकेट हो जाता है, इतना वो परेशान हो जाता है कि वो कुछ उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है, वो पूरी तरह परेशान हो जाता है, क्यों, क्योंकि सभी कुछ सफेद है कोई और कलर है ही नहीं। इसी प्रकार जो व्यक्ति ब्रह्म के स्तर पर पहुंचने का प्रयास ब्रह्म साहित्य मुक्ति को प्राप्त करता है तो वहां पर सब एक ही कोई और वेराइटी नहीं है, और वैरायटी ना होने के कारण वो पूरी तरह वहां पर सफोकेट लगने लगता है, वहां पर परेशान हो जाता है, अनुभव है। अस्पताल में क्या होता है यही होता है, सब जगह सफेद जैसे एंट्री करो बेड सफेद, कपड़ा भी सफेद, और नर्स का कपड़ा भी सफेद, और डॉक्टर का भी सफेद, और जो दवाई लाता वो भी सफेद, दूध देते वो भी सफेद, तो सब जगह सफेद, और वो अस्पताल में इतना परेशान हो जाता है कि कब मैं यहां से भागू। हम तो वो जो एक ही वस्तु को देख करके व्यक्ति परेशान हो जाता है, तो उनका जब बीमारी अवस्था थी तब वो ज्यादा हलचल नहीं होता, लेकिन जब स्वस्थ हो जाता है ज्यादा हलचल होता है। लेकिन मायावाद का क्या कहना है, जब हम बीमार अवस्था में तो ज्यादा हलचल करते हैं, और जब स्वस्थ हो जाते तो चुपचाप कुछ नहीं। चुपचाप कब हो गया, जब डॉक्टर कुछ अलग इंजेक्शन पॉइजन का इंजेक्शन देगा तो हो जाएगा चुपचाप, तो सुसाइड हो गया। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मायावादी लोग का जो कहना है जो कि ब्रह्म साहित्य निराकार में आकर्षित होना एक प्रकार का सुसाइड है, आत्महत्या है। तो वो लक्ष्य को रखकर कि मैं वृंदावन के धाम में तिनके के रूप में जन्म लूंगा, पहले मैं इधर जाऊंगा, तो फिर वो गलत है, वो नहीं कर सकते। लेकिन राधा कृष्ण प्रभु ने यह कमेंट किया है कि उनको ऐसे वृंदावन में भगवान की कृपा से उनको प्राप्त होती है, कैसे स्पेसिफाई नहीं है कि सबको मिलता है। थैंक यू वेरी मच। श्री प्रभुपाद की जय।